एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी में समाज और संस्कृति को देखने का हमारा नजरिया ही, आप कह सकती हैं, बदल दिया। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस।
हाँ, फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और संरचनावाद के पिता भी कहे जाते हैं वो।
बिल्कुल। आखिर क्या था उनके विचारों में ऐसा खास? मतलब उन्होंने पश्चिमी सोच के दबदबे को चुनौती दी और ये दिखाया कि हर संस्कृति, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों न लगे, उसके पीछे एक छिपा हुआ तर्क होता है।
हाँ, एक यूनिवर्सल पैटर्न, एक ढांचा। लेवी स्ट्रॉस सिर्फ किताबी विद्वान नहीं थे, वो एक तरह के बौद्धिक क्रांतिकारी थे।
उन्होंने हमें वो अदृश्य धागे देखना सिखाया जिनसे समाज बुना है, हमारी सोच बुनी है, है ना? लेवी स्ट्रॉस का जन्म हुआ, वो पले बड़े 1908 में ब्रुसेल्स में जन्म, पेरिस में परवरिश। फ्रांसीसी यहूदी माता पिता थे उनके।
हाँ, उन्होंने यूरोप का वो सुनहरा बेल एपोक का दौर देखा, उसके आखिरी दिन, फिर दो विश्व युद्धों की तबाही झेली
और उपनिवेशवाद का पतन भी देखा, मतलब काफी उथल पुथल भरा समय था वो।
और बौद्धिक तौर पर भी जबरदस्त हलचल थी। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पेरिस में अस्तित्ववाद का जोर था। सार्त्र थे, सिमोन द बुवार थी।
हाँ, वो सब व्यक्ति की आजादी, चेतना, इतिहास में उसकी भूमिका, इन सब पर जोर दे रहे थे।
सही कहा, हर कोई व्यक्ति की जिम्मेदारी और उसके चुनाव की बात कर रहा था।
और इसी माहौल में आते हैं लेवी स्ट्रॉस, एक बिल्कुल मतलब अलग विचार लेकर, संरचनावाद। ये तो सीधी टक्कर हुई होगी फिर।
हाँ, सीधी और जोरदार टक्कर। जहां अस्तित्ववाद कह रहा था कि भाई इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, वहीं लेवी स्ट्रॉस कह रहे थे, रुको जरा, व्यक्ति से ज्यादा जरूरी हैं वो विशाल अचेतन संरचनाएं,
जैसे भाषा के नियम,
समाज के कायदे।
हाँ,
और मिथकों के पैटर्न। वो मानते थे कि यही हमारी सोच और व्यवहार को तय करती हैं, भले ही हमें पता ना चले। सार्त्र इतिहास को मानवीय चुनाव का नतीजा मानते थे, लेवी स्ट्रॉस क्या कर रहे थे, वो संस्कृतियों के आर पार मौजूद एक शाश्वत, एक ऐतिहासिक तर्क ढूंढ रहे थे।
ये सोच तो उस वक्त बिल्कुल नहीं रही होगी।
एकदम नहीं। और इसने फिर लाकां, बार्थ, फूको जैसे कई और विचारकों को भी प्रभावित किया। और एक बात और थी, जैसे जैसे उपनिवेश खत्म हो रहे थे ना, तो दुनिया को गैर यूरोपीय समाजों को उनके अपने नजरिए से समझने की जरूरत महसूस हो रही थी, और लेवी स्ट्रॉस का काम इसके लिए आप कह सकते हैं मानो तैयार बैठा था।
ये भी दिलचस्प है कि वो एक आर्टिस्टिक परिवार से थे, पिता पेंटर थे, पेरिस में पले बढ़े, कानून और फिलॉसफी पढ़ी सॉर्बन से।
हाँ, और फिलॉसफी की वो प्रतिष्ठित अग्रगासियों पर एक समिति पास की, लेकिन कहते हैं फिलॉसफी उन्हें कुछ जमी नहीं।
अच्छा,
क्यों?
उन्हें वो थोड़ी सूखी और मतलब खुद में उलझी हुई लगती थी।
वो मजाक में कहते थे, ये तो दुकान की लड़की का दुनिया को देखने का नजरिया है।
हाँ,
लेकिन बचपन से उन्हें चीजें जमा करने का शौक था, तितलियां, पत्थर वगैरह, ये जो क्लासिफाई करने, पैटर्न पहचानने की आदत थी ना, यही बाद में उनके मानव विज्ञान के काम में एक अलग तरह से नजर आई, चीजों के पीछे का ढांचा देखना।
और फिर आया वो बड़ा मोड़ जिसने उन्हें यूरोप से बाहर निकाला।
बिल्कुल, 1935 में ब्राजील, साओ पालो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का न्योता मिला। ये उनके लिए एक तरह का पलायन था।
और वहां उन्होंने फील्ड वर्क किया।
हाँ, 1935 से 39 के बीच ब्राजील के अंदरूनी इलाकों में मातो ग्रोसो क्षेत्र के काडुवेओ, बोरोरो, निम्बिकवारा जैसे आदिवासी समुदायों के बीच लंबा समय बिताया।
आसान नहीं रहा होगा वो।
बिल्कुल नहीं, कोई हॉलीवुड एडवेंचर नहीं था वो, बहुत मुश्किल, थका देने वाला काम था। पर वहीं उन्हें पहली बार उन समाजों को करीब से देखने का मौका मिला जिन्हें पश्चिम आदिम कहता था, और वहीं उनके संरचनावादी विचारों के बीच पड़े।
लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, नाजी कब्जा।
हाँ, और फ्रांस में वीची सरकार के यहूदी विरोधी कानूनों के चलते उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 1941 में वो अमेरिका चले गए, भागना पड़ा उन्हें
निर्वासन में।
हाँ, और न्यूयॉर्क का ये निर्वासन उनके लिए आप समझिए अमेज़न के जंगलों जितना ही अहम साबित हुआ।
ऐसा क्यों?
क्योंकि वहां न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च में उनकी मुलाकात हुई रूसी भाषा विज्ञानी रोमन याकोबसन से। याकोबसन भाषा विज्ञान में ध्वनि यानी फोनोलॉजी पे काम कर रहे थे।
तो याकोबसन के काम में ऐसा क्या था जिसने लेवी स्ट्रॉस को इतना क्लिक किया?
देखिए, याकोबसन ने बताया कि भाषा का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, बल्कि उनके बीच के फर्क से बनता है, है ना? जैसे गर्म का मतलब तभी है जब ठंडा भी हो।
हाँ, विपरीत जोड़े, बाइनरी ऑपोजिशन।
बिल्कुल, ये जो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं, यही भाषा को अर्थ देते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी, क्या संस्कृति भी, क्या समाज भी ऐसे ही काम करता है?
अच्छा,
क्या समाज में भी चीजों का मतलब उनके विरोधी जोड़ों से तय होता है, जैसे कच्चा बनाम पका, प्रकृति बनाम संस्कृति, अपना बनाम पराया?
उन्हें लगा कि ये चाबी है।
हाँ, उन्हें लगा कि इसी तरीके से वो नातेदारी, मिथक जैसी चीजों के छिपे हुए ग्रामर को समझ सकते हैं। ये वो मेथोडोलॉजिकल चाबी थी जिसकी उन्हें तलाश थी।
वाह, मतलब भाषा के पैटर्न से पूरी संस्कृति का कोड क्रैक करने का तरीका, ये तो वाकई सोच बदलने वाली बात है। तो स्ट्रक्चरलिज्म का मूल आइडिया यही हुआ?
हाँ, मोटे तौर पर स्ट्रक्चरलिज्म व्यक्ति के अनुभव या उसके इरादे से हटकर उन अदृश्य नियमों और ढांचों पर ध्यान देता है जो हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को तय करते हैं,
और ये मानता है कि सांस्कृतिक विविधता के नीचे सब इंसानी समाजों में सोचने के कुछ बुनियादी यूनिवर्सल पैटर्न होते हैं।
बिल्कुल, और इन पैटर्न्स को समझने के लिए चीजों को अलग अलग नहीं देखना बल्कि उनके आपसी रिश्तों में देखना है, खासकर उनके विरोधी जोड़ों में, बाइनरी ऑपोजिशंस में।
लेकिन फिर ये सवाल उठता है ना कि अगर सब कुछ इन छिपी भी संरचनाओं से ही तय होता है तो हमारी अपनी आजादी कहाँ है? हमारी रचनात्मकता, हमारे चुनाव, वो कहाँ फिट होते हैं? क्या संरचनावाद इंसान को बस एक कठपुतली की तरह देखता है?
ये एक बहुत वाजिब सवाल है और ये संरचनावाद की आलोचना का एक मुख्य बिंदु भी रहा है हमेशा से। लेवी स्ट्रॉस का जोर बेशक उन बड़ी अव्यक्तिक संरचनाओं पर था जो व्यक्ति से परे हैं।
उनका मानना था कि ये संरचनाएं हमारी सोच को दिशा देती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो।
हाँ, और इसी को लेकर उनकी अस्तित्ववादियों से जोरदार बहस भी हुई। हालांकि बाद में जो उत्तर संरचनावादी विचारक आए, उन्होंने इसी बिंदु पर लेवी स्ट्रॉस से आगे जाकर कहा कि ये संरचनाएं खुद भी इतनी स्थिर नहीं हैं।
चलिए, अब उनके कुछ बड़े कामों पर आते हैं जिन्होंने इन विचारों को दुनिया के सामने रखा। शुरुआत करते हैं उनके नातेदारी पर उनके काम से।
उनका पहला बड़ा धमाका था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, यानी नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं, 1949 में। ये उनकी डॉक्टरेट थीसिस थी और इसने मानव विज्ञान में वाकई तहलका मचा दिया था।
क्या तर्क था उनका?
उनका मुख्य तर्क ये था कि समाज का जो मूल आधार है वो खून के रिश्ते यानी वंश नहीं बल्कि शादी के नियम है, जिनसे अलग अलग समूह एक दूसरे से जुड़ते हैं।
मतलब शादी एक तरह का सामाजिक समझौता?
हाँ, समझिए, पुराने समाजों में जब एक समूह दूसरे समूह को अपनी बेटी शादी में देता था तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक आदान प्रदान था। गठबंधन बनता था, शांति का वादा होता था, आपसी मदद का भरोसा कायम होता था।
तो वो कह रहे थे कि महिलाओं का ये आदान प्रदान समाज को बुनता था जैसे शब्द भाषा को बुनते हैं?
बिल्कुल सही, उन्होंने इसे संचार यानी कम्युनिकेशन के एक रूप की तरह देखा। महिलाओं का ये एक्सचेंज समाज की संरचना बनाता था। ये विचार उस समय बहुत बहुत क्रांतिकारी था।
लेकिन इसकी आलोचना भी हुई होगी।
हाँ, बाद में इसकी आलोचना भी हुई। कुछ आलोचकों ने, खासकर नारीवादी विचारकों ने कहा कि ये सिद्धांत महिलाओं को सिर्फ आदान प्रदान की वस्तु की तरह देखता है और उनकी अपनी इच्छा, उनकी एजेंसी को नजरअंदाज करता है। ये एक जरूरी बहस है जिसे ध्यान में रखना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। फिर आई वो किताब जिसने उन्हें अकादमिक दुनिया के बाहर भी मशहूर कर दिया, ट्रिस्टेस ट्रॉपिक्स, उदास कटिबंध, 1955।
ट्रिस्टेस ट्रॉपिक्स, हाँ, ये कोई सीधी साधी किताब नहीं है। ये ब्राजील यात्रा का संस्मरण भी है, मानव विज्ञान का गहरा विश्लेषण भी, और आधुनिक सभ्यता पर एक उदास दार्शनिक चिंतन भी।
और इसकी शुरुआत ही होती है उस मशहूर लाइन से,
मुझे यात्राओं और खोजियों से नफरत है।
हाँ,
ये तुरंत बता देता है कि ये कोई हीरो वाली कहानी नहीं होने वाली, ये एक गहरी आत्मचिंतन वाली यात्रा है। इसकी भाषा इतनी खूबसूरत है और विचार इतने गहरे कि इसने लेवी स्ट्रॉस को दुनिया भर में पहचान दिलाई।
इसे पढ़ते हुए कहते हैं उदासी का एहसास होता है।
हाँ, एक खो जाने का एहसास, वो वाकई जादू है उस किताब में।
और फिर आई द सैवेज माइंड, अपरिष्कृत मन, 1962। नाम से ही लगता है इसने जरूर हलचल मचाई होगी।
हलचल तो मचनी थी, ये नाम जानबूझकर थोड़ा उकसाने वाला रखा गया था। ये किताब उस पश्चिमी अहंकार पर सीधी चोट थी जो गैर पश्चिमी या तथाकथित आदिम समाजों की सोच को पिछड़ा हुआ, अतार्किक या बच्चों जैसा मानता था।
और लेवी स्ट्रॉस ने इसे गलत साबित किया।
यही उनका सबसे बड़ा धमाका था। उन्होंने साबित किया कि जिसे आदिम सोच कहा जाता था वो असल में पश्चिमी वैज्ञानिक सोच जितनी ही जटिल और तार्किक है, बस उसका तरीका अलग है।
कैसे, क्या तर्क दिया उन्होंने?
उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ तरीकों का है, दिमाग की क्षमता का नहीं। पश्चिमी सोच अमूर्त अवधारणाओं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, जबकि जिसे वो सैवेज माइंड कह रहे थे वो ठोस चीजों, पौधे, जानवर, मौसम के जरिए दुनिया को समझती है, उसे क्लासिफाई करती है।
उन्होंने इसे ब्रिकोलाज कहा था ना?
हाँ, ब्रिकोलाज, यानी जो भी औजार या सामान हाथ में है उसी से जुगाड़ करके कुछ नया और अर्थपूर्ण बना लेना। ये ठोस का विज्ञान है, साइंस ऑफ द कॉन्क्रीट। ये कहना कि एक तरीका दूसरे से बेहतर है, ये सरासर सांस्कृतिक अहंकार है। इस किताब ने सभी संस्कृतियों की बौद्धिक बराबरी का झंडा बुलंद किया।
ये तो वाकई जबरदस्त बात है। और फिर उनकी वो विशाल परियोजना आई, मिथोलॉजिस, मिथक शास्त्र श्रृंखला, चार खंडों में।
हाँ, 1964 से 1971 तक चली ये परियोजना, 20वीं सदी के सबसे महत्वाकांक्षी बौद्धिक कामों में गिनी जाती है। पहला खंड था द रॉ एंड द कुक्ड, कच्चा और पका।
इसमें उन्होंने क्या किया?
इसमें उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के सैकड़ों आदिवासी मिथकों का विश्लेषण किया
जी।
लेकिन उनका मकसद कहानी का मतलब समझाना नहीं था।
तो फिर क्या था?
उनका मकसद था मिथकों के पीछे छिपे तर्क को पकड़ना, उनकी अंदरूनी संरचना को समझना। वो दिखाना चाहते थे कि मिथक असल में सोचने के औजार हैं।
सोचने के औजार मतलब?
मतलब ये कि मिथक इंसान के मन में जो बुनियादी दुविधाएं और विरोधाभास होते हैं ना,
जैसे
प्रकृति बनाम संस्कृति, जीवन बनाम मृत्यु, कच्चा बनाम पका, उनसे जूझने और उन्हें सुलझाने का एक तार्किक तरीका है।
अच्छा,
अलग अलग दिखने वाले मिथकों के पीछे भी सोचने का एक ही यूनिवर्सल ग्रामर काम कर रहा होता है। उन्होंने खुद लिखा भी, जैसा आपने पहले कहा, मैं ये दिखाने का दावा करता हूं कि मनुष्य मिथकों में कैसे सोचते हैं, ये नहीं बल्कि मिथक मनुष्य के मन में उनकी जानकारी के बिना कैसे काम करते हैं, मानो मिथक खुद ही हमारे जरिए सोच रहे हों।
कमाल है, यानी दुनिया भर की कहानियों के पीछे दिमाग का एक ही ढांचा काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर लेवी स्ट्रॉस की विरासत क्या है, आज उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं?
देखिए, 60 और 70 के दशक में तो उनका डंका बजता था, मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि उनके काम ने ही एक तरह से उत्तर संरचनावाद को जन्म दिया।
डेरिडा जैसे विचारक?
हाँ, उन्होंने लेवी स्ट्रॉस की स्थिर संरचना की धारणा पर सवाल उठाए, लेकिन ऐसा करके उन्होंने लेवी स्ट्रॉस की अहमियत को और पुख्ताई किया। आज भी उनके मूल विचार बहुत प्रासंगिक हैं।
जैसे?
खासकर उनका नस्लवाद विरोध, एंटी एथनोसेंट्रिज्म, ये समझना कि कोई भी संस्कृति केंद्र में नहीं है, सब बराबर हैं, सभी संस्कृतियों में जटिल तर्क की पहचान करना, और सांस्कृतिक चीजों, मिथक, रीति रिवाज, कला का विश्लेषण करने के लिए उनके दिए गए औजार।
और ट्रिस्टिस ट्रॉपिक्स तो आज भी पढ़ी जाती है?
हाँ, वो तो एक साहित्यिक शाकार के तौर पर जिंदा है।
क्या उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू हैं जो उनके काम को समझने में मदद करें?
हाँ, कई छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उनका बचपन का वो चीजें इकट्ठा करने का शौक दिखाता है कि पैटर्न पहचानने की नजर उनमें शुरू से थी, या ये बात कि अकादमिक दर्शन उन्हें कभी रास नहीं आया। ये भी अहम है कि ब्राजील का फील्ड वर्क और न्यूयॉर्क में याकोबसन से मुलाकात, दोनों ने उनके विचारों को गढ़ने में बराबर की भूमिका निभाई, और 1973 में उन्हें अकेडमी फ्रांसिस का सदस्य चुना जाना।
फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित संस्था?
हाँ, ये एक मानव विज्ञानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। ये उनकी विद्वत्ता के साथ साथ उनकी लेखन शैली को भी मान्यता देता है।
क्या उनके विचारों का फिल्मों वगैरह पर भी कोई असर पड़ा?
सीधे तौर पर उनकी किसी किताब पर फिल्म बनाना तो मुश्किल है शायद, लेकिन उनके विचारों का संरचनात्मक विश्लेषण, मिथक की संरचना, बाइनरी ऑपोजिशन, इनका फिल्म थ्योरी पर और कई फिल्मकारों पर गहरा असर पड़ा है।
अच्छा,
खासकर फ्रेंच न्यू वेव के निर्देशकों पर। तो असर सीधे रूपांतरण में नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के एक नए संरचनावादी तरीके में है जो उन्होंने दिया।
हमने लेवी स्ट्रॉस की दुनिया की एक झलक देखी, कैसे उन्होंने संस्कृतियों की विविधता के नीचे छिपी एकता, उन सार्वभौमिक संरचनाओं को खोजने की कोशिश की।
बिल्कुल, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, आज की हमारी दुनिया जो एक तरफ इतनी जुड़ी हुई लगती है, वहीं दूसरी तरफ इतनी ही बंटी हुई और खंडित भी महसूस होती है।
हाँ, ये तो है।
ऐसे में लेवी स्ट्रॉस का उन गहरी साझा संरचनाओं, हमारे सोचने के उस यूनिवर्सल ग्रामर पे जोर देना, क्या ये हमें अपने मतभेदों से परे देखने में मदद कर सकता है? क्या ये एक साझा इंसानियत की भावना को फिर से तलाशने में हमारी मदद कर सकता है? सोचने वाली बात है।
जरूर सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।